पृष्ठ संख्या 192, दो, बिहारी, सन 1595 से 1663 ईस्वी। कविवर बिहारी का जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश के बसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में हुआ था, जो अब अलवर जनपद के अंतर्गत है और जहां अभी भी बिहारी के वंशज निवास करते हैं। अंतः साक्ष्यों के अनुसार बिहारी का बाल्यकाल बुंदेलखंड में तो सुघड़ तरुणाई का समय मथुरा ससुराल में बीता। इनके पिता केशव राय थे, किंतु ए केशव राय प्रसिद्ध कवि केशव राय ब्रैकेट में केशव दास ही थे या कोई और, इस पर विद्वानों में मतभेद है। इसका पता बिहारी के इस दोहे से चलता है, प्रगट भये द्विजराज कुल सुबह सुबसे ब्रज आए, मेरो हरो कलेश सब केशव केशव राय। बिहारी एक बहुश्रुत कवि थे, उनका संपर्क बादशाह शाहजहां से लेकर जोधपुर और बूंदी के राजाओं तक था, किंतु उन्होंने जयपुर के महाराजा जयसिंह के दरबार में रहकर अपनी काव्य प्रतिभा का प्रतिफलन करना ही उपयुक्त समझा। बिहारी की पत्नी भी कवयित्री थीं। कहते हैं कि जब जयपुर नरेश राजा जयसिंह अपनी नवपरिणीता पत्नी रानी चौहानी के प्रेम पाश में आबद्ध हो प्रजापालन और राजपाट के कार्यों से विमुख हो गए थे, तब बिहारी ने एक अन्योक्तिपरक दोहा लिखकर उस सोए हुए विलासी राजा को जगाने का कार्य किया। वह दोहा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। इससे प्रसन्न होकर महाराज ने बिहारी को बहुत सारा धन धान्य प्रदान किया। बिहारी ने इन्हीं की आज्ञा से 719 दोहे की प्रसिद्ध सतसई की रचना की। इस संदर्भ में भी यह दोहा प्रसिद्ध है, हुकुम पाई जय साहि को हरि राधिका प्रसाद, करी बिहारी सतसई भरी अनेक संवाद। कविवर बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के ही नहीं बल्कि समूचे रीतिकाल के सर्वमान्य सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कवि हैं। उनकी सी प्रतिभा वाला कवि सचमुच सदियों में कोई एक होता है। पृष्ठ संख्या 193, काव्य कृतियाँ। बिहारी की अक्षय कीर्ति का आधार एकमात्र उनकी रचना सतसई है, जिसका प्रमुख विषय श्रृंगार वर्णन है, किंतु इसके अतिरिक्त भक्ति नीति रीति ज्योतिष गणित आयुर्वेद आदि से संबंधित अनूठी उक्तियाँ भी इसमें देखने को मिलती हैं। बिहारी ने रस भाव नायिका भेद ध्वनि वक्रोक्ति आदि रीतियुगीन प्रमुख विषयों को ध्यान में रखकर भी अनेक सुंदर तथा उत्कृष्ट दोहों की रचना की है। डॉक्टर अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने जोर देकर कहा कि यूरोप में बिहारी सतसई की टक्कर की कोई रचना नहीं है। बिहारी ने प्रेम और कला दोनों को समान महत्व देते हुए कहा था, तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। बिहारी का समस्त जीवन काव्य साधना में व्यतीत हुआ। उनके एक एक मर्म स्पर्शी दोहे में सौंदर्य और प्रेम पीड़ा की मनोरम झांकियां हैं। रूप वर्णन वयह संधि के चित्रण तथा मादक एवं गदराई युवावस्था के मधुर चित्र सभी को मुग्ध कर लेते हैं। यद्यपि कि बिहारी संयोग और वियोग दोनों के सिद्धहस्त कवि हैं, तथापि बिहारी की अधिक वृत्ति संयोग श्रृंगार के वर्णनों में ही रमी है। अपने जीवन के मर्म स्पर्शी अनुभवों को बिहारी ने जिस जिंदा दिली प्रखरता और कलात्मकता के साथ शब्दबद्ध किया, वह वास्तव में विलक्षण है। उनकी सतसई सही मायने में श्रृंगार भक्ति और नीति की त्रिवेणी है। बिहारी की भाषा बड़ी ही प्रौढ़ प्रांजल परिष्कृत और परिमार्जित ब्रजभाषा है। उक्ति वैचित्र जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है, जो फारसीपन से प्रभावित है। बिहारी की भाषा में संस्कृत के अतिरिक्त बुंदेली अवधी खड़ी बोली तथा अरबी फारसी के शब्दों का प्रचुर प्रयोग है। माधुर्य गुणों से युक्त उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अनुप्रास श्लेष आदि अलंकारों से अलंकृत, मुहावरों और मंजुल लोकोक्तियों से अवेष्टित, कल्पना और ऊहात्मकता से संवलित विहारी की काव्य भाषा का ही कमाल था, जिसने दोहे जैसे छोटे छंद में गागर में सागर भरने की उक्ति को चरितार्थ ही नहीं किया, बल्कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर जैसी नई उक्ति को भी जन्म दिया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद आदि दो एक कवियों के अतिरिक्त भाषा की दृष्टि से बिहारी की समता करने वाला, भाषा पर वैसा अधिकार रखने वाला अन्य कोई भी मुक्तककार दिखाई नहीं पड़ता। इन्हीं सब दृष्टिकोणों से बिहारी की कविता का यश आज भी अमर है। पृष्ठ संख्या 194, बिहारी और उनकी सतसई। महाकवि बिहारी साहित्य के उस मिलन बिंदु पर खड़े हैं जहाँ संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की काव्य परंपरा, विशेषकर सतसई परंपरा आकर विश्राम लेती है और परवर्ती श्रृंगार परक काव्य एक नया मोड़ लेता है। बिहारी ने जिस सतसई का निर्माण किया उसकी एक सुदीर्घ परंपरा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का मत है कि बिहारी की सतसई के आधार ग्रंथ संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश के ही हैं। गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती, अमरुक शतक आदि अपभ्रंश के बहुत से दोहे सतसैया के दोहों से मिलते जुलते हैं। सतसैया पारंपरिक श्रृंगार धारा का विकास है। बिहारी सतसई पर इन ग्रंथों का प्रभाव सहज ही देखा जा सकता है। बिहारी की सतसई एक मुक्तक रचना है। शुक्ल जी ने मुक्तक को परिभाषित करते हुए कहा था, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, और मुक्तककार बिहारी के संदर्भ में उनकी राय थी कि मुक्तक कविता में जो गुण होने चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। बिहारी की श्रृंगारिकता और कला निपुणता के संदर्भ में शुक्ल जी ने माना कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। बिहारी के ही प्रकरण में उन्होंने पुनः आगे लिखा कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा, यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। इसी से वह दोहे ऐसे छोटे से छंद में इतना रस भर सके। ये दोहे क्या हैं, रस के छोटे छोटे छींटे हैं। इसी से बिहारी के विषय में प्रसिद्ध है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर देखत माँ छोटन लगें घाव करें गंभीर। डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा लिखते हैं कि बिहारी जिंदा दिल थे जो जीवन को रोते बिसुरते नहीं अपितु हंसकर बिताना पसंद करते थे। वे रसिक थे किंतु उनकी रसिकता का आधार विलासिता नहीं कला प्रियता थी। प्रेम के क्षेत्र में बिहारी भ्रमर वृत्ति के कायल नहीं थे। कली कली रस उथली वाली प्रेम भावना उन्हें पसंद नहीं थी। उनके प्रेम का आदर्श पर्वत से भी ऊंचा और समुद्र से भी गहरा है। गिरते ऊंचे रसिक मन बूढ़े जहां हजार, वहां सदा पशु नरन को प्रेय पयोधि पगार। पृष्ठ संख्या 195, बिहारी का जीवन अनुभव बहुत विस्तृत था। उन्होंने जीवन में अनेक उत्थान पतन देखे किंतु जीवन संग्राम में कभी हार नहीं मानी। मनुष्य के स्वभाव की जटिलता उनके कवि नेत्रों के सन्मुख सहज ही खुल जाया करती थी। सतसई की उक्तियों में जो उनका अपना और लोक का जीवन निरीक्षण मिलता है उससे बिहारी की काव्य प्रतिभा का सहज ही पता चलता है। बिहारी की समास बहुलता भाषा भी उन्हें एक जौहरी की भांति प्रस्तुत करती है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि सतसई का मूल प्रतिपाद्य श्रृंगार है। श्रृंगार के संयोग वियोग की विविध भंगिमाओं, विरह की विविध दशाओं और अंतरदशाओं, गोपन प्रेम के विविध रूपों के अतिरिक्त नायक नायिकाओं के मान मनोवल, प्रकृति चित्रण, ऋतु वर्णन, नीति और भक्ति की मार्मिक सूक्तियाँ, नख शिख चित्रण, आलम्बन की मधुर चेष्टाएँ और उद्दीपन के अगणित विभाव आदि सभी कुछ का वर्णन सत्सई में मिल जाता है। मिलन के प्रकरणों की बिहारी ने बड़े ही मनोवैज्ञानिक और सांकेतिक प्रसंगों की सृष्टि की है। उनकी वृत्ति स्त्री देह के बाह्य सौंदर्य में जितनी रमी है उतनी आंतरिक रमणीकता में नहीं। बिहारी ने नायिकाओं के अंग प्रत्यांगों का बड़ा ही सूक्ष्म वर्णन किया है। नख शिख परिपाटी के अनुसार उन्होंने वेड़ी, नयन, नासिका, कपोल, कान, अधर, चिबुक, डिठौना, मुख, हास्य, कुछ, कटी, जंघा एवं एड़ी तक की लालिमा का जिक्र किया है। सतसई ऐसे वर्णनों से भरी पड़ी है। इसमें भी कजरारे, दीर्घ नेत्रों के चंचलपन, कपोलों के गाढ़, अधरों के अरुण बिंब, कुंचों के उन्नत, दांतों के विद्युत फल आदि का विशेष स्पृहा के साथ चित्रण है। परंपरा के साथ इनमें कल्पना और वर्णन की उपमा और अप्रस्तुत की मौलिकताएं भी हैं। नायक द्वारा समागम के क्षणों में कुछ और होठों पर किए गए दंतक्षत को दर्पण के सामने दिन भर नायिका देखकर बार बार कैसे विह्वल होती है, एक चित्र देखिए। छिनक उघारत छिन छुवत, राखत छिनक छिपाए, सब दिन पिय खंडित अधर दर्पण देखत जाए। विरह वर्णनों के अंतर्गत बिहारी ने मान, प्रवास, करुण आदि विरह की दशाओं तथा स्मरण, गुण कथन, उद्योग, जड़ता, व्याधि, अभिलाषा, प्रलाप, दैन्य, मूर्छा आदि अंतरदशाओं का भी बड़ा ही सूक्ष्म वर्णन किया है। सत्सई में आया प्रकृति चित्रण भी अनूठा है। बिहारी ने वसंत, ग्रीष्म, पावस, शरद, हेमंत और शिशिर छहों ऋतुओं का बड़ा ही मोहक, अलंकारिक और स्वाभाविक वर्णन किया है। इनमें प्रकृति के आलंबन और उद्दीपन दोनों ही रूप हैं। पावस का प्रथम पयोद विरहिणी को कैसा लगता है देखिए। पृष्ठ संख्या 196। धुरवा हो ही न अल इहें, धुआं धरन चहु कोद, जारत आवत जगत को पावस प्रथम पयोद। इसी प्रकार सत्सई में भक्ति और नीति की उक्तियाँ भी बड़ी ही अनुभव प्रसूत और स्वाभाविक हैं। बिहारी का संबंध निम्बार्क संप्रदाय के रसिकोपासना या कृष्णोपासना से लगाया जाता है। सत्सैया का मंगलाचरण श्री राधा जी को समर्पित कर बिहारी ने अपनी रसिकोपासना का परिचय दिया है। इस प्रकार बिहारी सत्सई भिन्न भिन्न चित्रों की एक एल्बम सी जान पड़ती है। मिस्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में लिखा कि इस एक छोटे से ग्रंथ में इन कविरत्न ने मानो गागर में सागर भर दिया है। इतने छोटे से ग्रंथ में इतना चमत्कार अन्य कोई भी हिंदी कवि नहीं ला सका है। बिहारी और देव में कौन बड़ा है, लाला भगवान दीन तथा पंडित पद्म सिंह शर्मा ने इसे लेकर हिंदी में काफ़ी चर्चा की है। लाला जी के शब्दों में बिहारी काव्य रीति के पक्के ज्ञाता थे और पंडित शर्मा जी के अनुसार श्रृंगार रस वर्णन, पद विन्यास चातुर्य, अर्थ गांभीर्य, स्वभावोक्ति और स्वाभाविक बोलचाल आदि खास गुणों में वह अपना जोड़ नहीं रखते। दीन जी देव को तो शर्मा जी बिहारी को रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि मानते थे। सर्वप्रथम जब पंडित कृष्ण विहारी मिश्र ने देव और बिहारी नामक ग्रंथ की रचना कर देव को सर्वश्रेष्ठ कवि करार दिया तो इसके प्रति उत्तर में ही लाला जी ब्रैकेट में लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव की रचना कर बिहारी को देव से बड़ा कवि घोषित किया। कालांतर में इस देव और बिहारी विवाद ने हिंदी में निर्णयात्मक आलोचना को जन्म दिया, जिसके सबसे बड़े पुरोधा आचार्य शुक्ल हैं। बिहारी सत्सई का प्रभाव परवर्ती रचनाकारों पर भी पड़ा। रसनिधि, वृंद, मतिराम, भूपति, सूर्यमल आदि ने बिहारी के अनुकरण पर ही सत्सईयों की रचना की। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा कि बिहारी का प्रभाव प्रवर्ती हिंदी साहित्य पर गहराई से पड़ा। उन्होंने सत्सईया प्रस्तुत करके कई कवियों में सत्सई लिखने का लोभ जगाया। इन्हीं गुणों के कारण रीतयुगीन कवियों में जितनी लोकप्रियता बिहारी को मिली उतनी किसी अन्य कवि को प्राप्त नहीं हुई।